शांति। परोपकार का गुण मानव जीवन के सभी गुणों का सिरमौर है। जीवन में सभी गुण आ जाए, परंतु अगर परोपकार का गुण नहीं आया तो अन्य गुण होते हुए भी वे किसी को सुख नहीं दे पाएंगे। परोपकार अर्थात दूसरों के प्रति उपकार करने की भावना। अपना हित तो सभी करना जानते हैं, अपनी भलाई तो सभी करते हैं, परंतु दूसरों का हित करना, दूसरों की भलाई करना, ये कोई विरला ही जानता है। और जो दूसरों के उपकारी बनते हैं वे ही सच्चे परोपकारी कहे जाते हैं। स्वयं के उपकार में तो खुशी होती ही है, लेकिन जितना दूसरे के उपकार में आनंद मिलता है उतना स्वयं के उपकार में नहीं। एक बार महात्मा गांधी जी से किसी ने पूछा कि बापू, आपको सबसे अधिक सुख किस समय अनुभव होता है? तब बापूजी ने कहा कि जिस समय मैं दूसरों को भोजन खिलाता हूं ना, तब मुझे बहुत सुख अनुभव होता है। तब फिर बापूजी से पूछा कि क्यों बापूजी, जब आप स्वयं भोजन करते हैं तब आपको सुख क्यों नहीं उतना मिलता? तो बापूजी ने कहा कि अरे, तब तो सुख उसकी झोली में चला जाता है जो मुझे भोजन कराता है। तो देखिए परोपकार में कितना आनंद है। अगर देखा जाए सभी तत्व प्रकृति के अंदर जितनों को भी हम देखते हैं वे सब अपने सामर्थ्यता के अनुसार परोपकार ही तो करते हैं। प्रकृति तो एक खुले पुस्तक की तरह ही है, वह मूक होते हुए भी परोपकार की शिक्षा देती है। सूर्य सुबह से शाम तक सबको प्रकाश देने का ही परोपकार करता है। चंद्रमा अपनी शीतल चांदनी औरों पर सदा बरसाता रहता है। वृक्ष अपना फल देकर अनेकों की भूख मिटाते हैं। नदी शीतल जल देकर सबको तृप्त करती है और पहाड़ और धरती अपने खनिज पदार्थ अनेक रत्न देकर सबको संतुष्ट करते हैं। तो देखिए परोपकार कितना बड़ा गुण है। परोपकार सभी गुणों से सबसे बड़ा गुण है। यह सभी धर्मों में सबसे बड़ा धर्म है। धर्म अर्थात जो धारण किया जाए, और परोपकार का गुण अगर धारण किया जाए, इनसे बड़ा धर्म क्या होगा? परोपकार सभी व्रतों में सबसे बड़ा व्रत है। व्रत अर्थात प्रतिज्ञा। और किसने यह प्रतिज्ञा कर ली कि उसे परोपकार करना है, इनसे बड़ा व्रत क्या होगा? और सही रूप में तो हम ये कह सकते हैं कि परोपकार ही सभी उपदेशों का सार है। आज जितने भी उपदेश हम सब सुनते हैं उन सब का सार परोपकार ही है। परोपकार त्याग की भावना से उत्पन्न होता है, दान की भावना से उत्पन्न होता है, और यही गुण मानव जीवन के महत्व को बढ़ाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि कानों की शोभा कुंडल पहनने से नहीं, लेकिन ज्ञान श्रवण करने से है। हाथ की शोभा स्वर्ण कंगन पहनने से नहीं, लेकिन दान करने से है। इसी प्रकार महान व्यक्ति की शोभा परोपकार में है, केवल चंदन लगाने में नहीं। तो कितनी भारी महिमा है परोपकार की। परोपकार के कारण ही तो ये पृथ्वी टिकी हुई है। आज सारे संसार में जो लोग जीवित हैं, वो परोपकार के कारण ही तो जीवित हैं। जिस जिस कार्य को जो भी व्यक्ति जानते हैं, वे केवल अपने लिए ही अगर करे तो इस धरती पर जीना मुश्किल हो जाए। कितना कठिन हो जाए हरेक का जीना अगर हरेक केवल अपने लिए ही जिए। इसलिए परोपकार का गुण सर्व गुणों में सिरमौर है। सबके अंदर अगर सुख देने की भावना आ जाए तो संसार कितना सुखी बन जाए, सभी देवता बन जाए। आज सुख देने की शिक्षा तो सभी देते हैं, लेकिन कितना सुख वो दूसरों को दे पाते हैं, क्योंकि मन में अनेक महत्वाकांक्षाएं हैं, स्वार्थ है, इच्छाएं हैं अपने प्रति, जो परोपकारी बनने नहीं देती। इसलिए अगर परोपकारी बनना चाहते हैं तो अपनी इच्छाओं को खत्म करो, संतोष का गुण धारण करो, महत्वाकांक्षी मत बनो, लेकिन सेवा करने की लगन धारण करो। स्वार्थ के स्थान को छोड़ परमार्थ का स्थान अपनाओ। अब कई लोग सोचते हैं कि परोपकारी होने के लिए तो धनवान होने की आवश्यकता है। अगर मेरे पास धन नहीं है तो मैं दूसरों को दान क्या करूं? ये बात तो सही है। अगर किसके पास धन ही नहीं, वो व्यापार क्या करेगा? धन तो आवश्यक है, लेकिन परोपकार का अर्थ इतना ही नहीं कि हम केवल धन ही दान करें। एक निर्धन व्यक्ति भी परोपकारी बन सकता है। केवल विचारों का श्रेष्ठ धन चाहिए, तन की शक्ति का धन चाहिए, शुद्ध वाणी का धन चाहिए, क्योंकि ये भी धन है, ये भी संपत्ति है, गुणों की संपत्ति, आध्यात्मिक शक्ति की संपत्ति, समय की संपत्ति, श्वास की संपत्ति, श्रेष्ठ संकल्पों की संपत्ति। इस संपत्ति से भी हम परोपकार कर सकते हैं। इसलिए ये सोचना गलत है कि परोपकारी होने के लिए हमें धनवान होने की आवश्यकता है। परोपकारी औरों को जो सुख देता है, चाहे वो मन से सुख दे, वचन से सुख दे, अपने कर्म से सुख दे, अपनी विशेषताओं से सुख दे, अपनी कला से सुख दे, ज्ञान से सुख दे, लेकिन जो किसी भी प्रकार से अन्य को सुख देता है, उसके जीवन में स्वतः सुख आता है। सुख की वृद्धि उसके जीवन में स्वाभाविक होती है। सुख पाने के लिए उसको प्रयत्न नहीं करना पड़ता है, उसे तो केवल परोपकारी बनने का प्रयत्न करना होता है, और सुख तो उसका फल है जो उसे अपने आप मिलेगा। इसीलिए कहा है कि तू कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। अगर परोपकार का कर्म हम करते जाएंगे तो भगवान अवश्य उसका फल देगा। फल के लिए भगवान पर छोड़ दो, आप अपना श्रेष्ठ कर्म करते जाओ, आपका श्रेष्ठ कर्म कभी निष्फल नहीं होगा। लेकिन ये जरूर है कि निष्कामी बनकर के कर्म करें। अगर कामना सहित कर्म होगा तो वह कर्म परोपकार नहीं कहलाया जाएगा। परोपकार करने के लिए तो कहा गया है कि गुप्त दान होना चाहिए। गुप्त दान ही महाकल्याण है। एक हाथ अगर आपका दान करता है तो इतना गुप्त हो जो दाया हाथ दान करे तो बाएं को पता न चले। गुप्त दान का इतना महत्व है। लेकिन आज की दुनिया में गुप्त दान के महत्व को कोई भी नहीं जानता। वे यही समझते हैं कि अगर मान मिलेगा, शान होगी, महिमा होगी, नाम निकलेगा तो मैं दान करूंगा, लेकिन अगर ये सब नहीं होगा तो मैं नहीं करूंगा। और फलस्वरूप वे परोपकारी भी नहीं बनते। और अगर नाम मान शान की इच्छा रखकर कोई दान करता है तो वह तो स्वार्थी हुआ, वो परोपकारी नहीं हुआ। अगर जीवन में परोपकार की भावना नहीं और व्यक्ति केवल अपने लिए ही जीता है तो मानो वह जीवन पशु समान है। ये पशु प्रवृत्ति ही है जिसके लिए कहा गया है कि पशु प्रवृत्ति है जो आप ही चरे। जानवर अपने आप को ही भोजन देता है, तो पशु प्रवृत्ति अपने आप ही चरे, पर मनुष्य है वही जो मनुष्य के लिए मरे। अपने लिए किया तो कौन सी बड़ी बात की, परंतु औरों के लिए किया तब बड़ी बात मानी जाएगी। परोपकार रहित जीवन तो उस लंबे खजूर के पेड़ की तरह है जिसके लिए कहा गया है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। एक खजूर का पेड़ कितना ऊंचा होता है, उसमें फल भी होते हैं, लेकिन वो किस काम के? कौन चढ़ेगा इतना ऊंचा उस फल को तोड़ने के लिए? तो न वो अपना फल दे सकता है और न ही पंछियों को छाया दे सकता है। तो जो व्यक्ति परोपकारी नहीं है वो उस खजूर के पेड़ की तरह है। उसमें बहुत सी विशेषताएं हैं, बहुत से गुण हैं, कई उपलब्धियां हैं, लेकिन उनका वो प्रयोग नहीं करता, उनको सफल नहीं करता, उनका सदुपयोग नहीं करता, तो फिर वो बढ़ती भी नहीं है। क्योंकि अगर हम अपने गुणों का सदुपयोग करते हैं, अपनी विशेषताओं को सेवा में लगाते हैं, तो हमारी विशेषताएं कम नहीं होगी, वो बढ़ेगी। जिसके लिए कहा गया है, धन दिए धन ना खूटे। वो कौन सा धन है जो बांटने से बढ़ता है? अवश्य अपनी विशेषताओं का धन, अपने गुणों का धन, अपनी शक्तियों का धन, अपने श्रेष्ठ संकल्पों का धन, ज्ञान युक्त वाणी का धन, ये भी एक धन है जो जितना हम बांटते हैं उतना ही ये धन बढ़ता जाता है। आज के युग में परोपकार का पाठ और भी आवश्यक हो गया है, क्योंकि अधिकतर लोग दूसरों की चिंता न करके अपने स्वार्थ में ही लगे हुए हैं, और ऐसे लगता है जैसे वही उसका धर्म बन गया है। मानवता हम इसे ही कहते हैं जिसमें हमारे जीवन में परोपकार हो। अगर मानव होकर के हम परोपकार नहीं करते तो मानव मानव नहीं, वो पशु समान। वास्तव में पशु समान कहना भी ठीक नहीं, क्योंकि पशु भी सेवा करते हैं। आज कई पशु हैं जो मनुष्यों की सेवा में ही सदा लगे हुए हैं, लेकिन इंसान अगर केवल अपने लिए ही करता है तो वह पशु से भी बदतर है, वो हैवान के समान है। अगर हैवान कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसीलिए हे मानव, अपने सच्चे धर्म को पहचानो, अपने कर्मों को पहचानो, जो तुम्हें प्राप्त है वह औरों को बांटो, और वास्तव में यही सच्चा उपकार है, यही सच्चा परोपकार है। कदम कदम पर परोपकार की भावना हम सबसे ले सकते हैं, सीख सकते हैं, सबका गुण प्राप्त कर सकते हैं। दधीची ऋषि के लिए कहा जाता है कि उसने अपनी हड्डियां गला दी देवताओं की रक्षा करने के लिए। तो क्या हम थोड़ी सी भी सेवा नहीं कर सकते अन्य आत्माओं की? बस इतना ही है कि हमें हर एक से गुण लेकर के उनसे वो शिक्षा प्राप्त करके शक्ति धारण करनी है। दत्तात्रेय ऋषि ने तो 24 गुरु किए, जड़ चेतन को अपना गुरु बनाया। क्या हम इस प्रकार के संकल्प करके सबसे गुण नहीं ले सकते? अगर हम ये दृढ़ संकल्प करेंगे कि हमें भी अपने जीवन में परोपकार की भावना जगानी है, सबकी दिल से सेवा करनी है, सबको सुख देना है, तो हम अनेक आत्माओं को सुख दे सकेंगे। और इससे केवल हम दूसरों को ही सुख नहीं देंगे पर खुद को भी सुख मिलेगा, क्योंकि जो भी हम कर्म करेंगे उस कर्म का फल हमें अवश्य मिलेगा। अगर सुख देंगे तो सुख मिलेगा, किसी की भी कभी भी बद्दुआ न मिले, ये भी एक लक्ष्य रखना जरूरी है। अगर कोई दुआ नहीं देता तो कोई बात नहीं, हम भलाई करते जाएं, परंतु कोई बद्दुआ न दे, क्योंकि बद्दुआ का भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। हम ऐसा कर्म ही क्यों करें जो किसके बद्दुआ के पात्र बन जाए। परंतु दुआ लेने के लिए अंदर में हृदय की विशालता चाहिए, स्वार्थ रहित कर्म चाहिए, निस्वार्थ भावना चाहिए, बस मुझे देना है, जो कुछ मेरे पास है वह मुझे औरों को देना है। इस संकल्प से हमारी शक्ति और भी बढ़ जाएगी। आज कई लोग ये सोचते हैं कि अगर हम दूसरों को देंगे तो शायद हमारी शक्ति कम हो जाएगी। ये बात गलत है। अगर वो सूक्ष्म शक्ति है तो वो शक्ति घटेगी नहीं, वो बढ़ेगी। अनेकों को उससे सुख मिलेगा तो उसका रिटर्न आपको अवश्य प्राप्त होगा। तो जीवन को परोपकारी बनाइए, और परोपकार का गुण जो सर्वश्रेष्ठ गुण है, इसको अपने जीवन में कदम कदम पर लाइए, तो आप अनुभव करेंगे कि आपका जीवन कितना श्रेष्ठ बन जाएगा। जो भी आपके पास है, पहले मन में ये सोचो कि मैं इससे अन्य की सेवा करूं। अगर मेरे पास दो रोटी है तो मैं दूसरे को एक रोटी भी खिला सकूं। इतना हृदय विशाल हो, मैं एक रोटी से ही पेट भर सकता हूं, पर दूसरे को भी मैं एक रोटी देके उसे भी संतुष्ट करूं। हाँ, ये कई बार महसूस होता है कि दूसरे संतुष्ट होते ही नहीं हैं। हम चाहे उन्हें कितना भी देते हैं तो भी वे संतुष्ट नहीं होते। लेकिन ये रहा उसका हिसाब किताब, ये रहे उसके कर्म। ये जरूरी नहीं है कि मैं हर एक व्यक्ति को 100% संतुष्ट कर भी पाऊंगा, लेकिन परोपकार की भावना होगी तो 100% न सही, 95% को तो हम संतुष्ट कर ही पाएंगे, जरूर करेंगे। और हो सकता है कोई इतना स्वार्थी हो जो उस स्वार्थ के कारण कभी संतुष्ट न भी हो, परंतु ये भी हमें देखना है कि मेरी भलाई में किसी की बुराई तो नहीं होती। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं किसी पर परोपकार करने जा रहा हूं और वह व्यक्ति आलसी बनता जा रहा है, ये भी परोपकार नहीं। अगर दूसरे का स्वार्थ मेरे परोपकार से बढ़ रहा है तो मेरा कर्म परोपकार नहीं है, ये उसके स्वार्थ को बढ़ा रहा है, ये तो और ही नुकसान करेगा। अगर किसी को मेरा परोपकार आलसी बना रहा है तो यह भी परोपकार नहीं है, मुझे उसे स्वावलंबी बनाना है, मुझे उसे आत्मनिर्भर भी बनाना है। तो वास्तव में परोपकार इसी को कहेंगे कि जो मैं दूसरे को आत्मनिर्भर भी बना सकूं, उसको उसके पैरों पर भी खड़ा कर सकूं, उसके चरित्र का भी निर्माण कर सकूं, उसके मन को शांति भी दे सकूं, खुशी भी दे सकूं, तो अवश्य हमारे जीवन में खुशी शांति तो आएगी ही। ये कभी नहीं सोचिए कि मेरे देने से मेरा ये कम हो जाएगा। वास्तव में कुछ भी कम नहीं होता। आज अगर मेरे पास कुछ है तो अवश्य ये मेरे श्रेष्ठ कर्म का भाग्य है। वस्तुएं ऐसे नहीं आई, ये श्रेष्ठ कर्म का भाग्य स्वरूप में मेरे सामने आई है। तो अगर मैं इस भाग्य को और बढ़ाना चाहता हूं तो मेरा कर्तव्य है कि जो कुछ मेरे पास उपलब्ध है उसका सदउपयोग करूं, चाहे मेरे तन की शक्ति का, चाहे मन की शक्ति का, चाहे धन की शक्ति का, या वचन की शक्ति का, कर्म की शक्ति का, गुणों का, इन सब का मैं सदउपयोग कर सकूं। और जितना मैं इसका सदउपयोग करूंगा उतना ही मेरे ये सारी जो प्राप्तियां हैं वो बढ़ती जाएगी, और जब बढ़ती जाएगी मैं और दान करता जाऊंगा और परोपकार की भावना जागृत करके सेवा करता जाऊंगा तो मेरी उपलब्धियां और भी बढ़ती जाएगी। इसलिए हम यही निश्चय करें, मन में दृढ़ संकल्प करें कि मुझे परोपकारी बनना है। परोपकारी ही देवता बन सकता है। देवता किसे कहते हैं? देवता का अर्थ केवल इतना ही नहीं कि वो मंदिर में पूजा जाता है, परंतु देवता का अर्थ है जो सदा देता ही रहता है, जो सदा दाता के समान है। अगर हमारी जीवन दाता के समान नहीं, केवल लेवता है, तो वो वास्तव में मानवता नहीं। अगर हम केवल अपने लिए ही जी रहे हैं, यह जीना जीना नहीं। अगर हम सचमुच जीना चाहते हैं तो हमें औरों के लिए ही जीना है, और औरों के लिए जीना माना अपने जीवन को सार्थक बनाना। तो जीवन को सार्थक बनाने के लिए, श्रेष्ठ जीवन का अनुभव करने के लिए परोपकार का गुण धारण कीजिए। यही सच्चा धर्म है, यही सच्चा व्रत है, यही सभी उपदेशों का सार है। और अगर इनको जीवन में धारण कर लिया तो जीवन धन्य हो जाएगा। ओम शांति।